समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। सुप्रभात। मुनीर नियाज़ी का एक खूबसूरत सा शेर है, वक्त किस तेजी से गुजरा रोजमर्रा में मुनीर, आज कल होता गया और दिन हवा होते गए। इसलिए वक्त की अहमियत को समझते हुए आगे बढ़ें, यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं फरहत नाज़ और मेरे साथ है अनीता आनंद। अनीता से जानेंगे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में। नमस्कार अनीता।
नमस्कार फरहत। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स एंड अ वार्म वेलकम। Listeners tuned into Akashwani Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring you our ever exciting daily news magazine, Aaj Savere, wherein over the next half an hour, we shall bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 1st of September. So let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi has projected India as the land of biggest opportunities globally and promised the business sector facilitation, reforms, a stable policy regime and high growth. Addressing the ET World Leaders Forum, Mr. Modi asked investors to commit to innovation, performance, positive disruption and high quality products. He said his dispensation has begun its third term with more determined intentions and is full of hope and confidence. Prime Minister said, while people in most countries that went to polls this year voted for a change, Indians preferred continuity, political stability and economic growth. Mr. Modi said that a new middle class is driving the country's progress and setting the direction for its market. He said India is writing a unique success story and the impact of its reforms is visible in the economy's performance, underlining his government's initiatives in the fields of green hydrogen, semiconductors, deep ocean and space. The Prime Minister said that his government wants to prepare the country for the challenges and opportunities that await India. Mr. Modi said his government is working to make the country a global health and wellness center. He said the government has added 1 lakh more medical seats in the last 10 years and over 75,000 more seats will be added in the next 5 years. The Prime Minister also highlighted efforts to boost India's tourism profile and make it a global food basket. Mr. Modi said it is his resolve to ensure a Made in India product on every dining table across the world. He said his government has succeeded in effecting big changes in people's lives with its mantra to reform, perform and transform.
वहीं अनीता, सरकार देश में टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना लेकर आएगी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली में कहा कि भारत में इस्तेमाल किए जा रहे सभी 99% से भी अधिक मोबाइल फोन देश में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष एप्पल अपना नया फोन भारत में बनाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विनिर्माण वर्ष 2013-14 में 29 अरब डॉलर का था, जो 2022-23 में बढ़कर 105 अरब डॉलर हो गया है।
Union Minister for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, yesterday released the Biotechnology for Economy, Environment and Employment, Bio-E3 Policy 2024 in New Delhi. While addressing the media, Dr. Singh said that this policy will foster high-performance biomanufacturing in the country. He also added that it will have a significant impact on various sectors such as food, energy and health. Mr. Singh underscored that the public-private partnership model will be an intrinsic part of the policy implementation, incentivizing industry to promote employment generation. He also mentioned that biomanufacturing and biofoundry will drive the country's future bioeconomy and promote green growth. Earlier, the Union Cabinet approved the Bio-E3 policy on 24th of August.
वहीं केंद्र ने दूरसंचार अधिनियम 2023 के शुरुआती नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन्हें डिजिटल भारत निधि का नाम दिया गया है। ये अधिनियम पूर्ववर्ती यूनिवर्सल सर्विस ऑब्जर्वेशन फंड का स्थान लेगा। अधिसूचना के अनुसार योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वालों को डिजिटल भारत निधि से राशि दी जाएगी। इस निधि से दूरसंचार सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी वंचित वर्गों तक पहुंचाई जाएगी। वहीं मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और संसद की संयुक्त समिति जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से मुलाकात कर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में किए गए प्रस्तावों का समर्थन किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन परिषद के अध्यक्ष और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने किया। शुक्रवार को जेपीसी ने दूसरे दौर की बैठक की जिसमें कुछ मुस्लिम संस्था भी शामिल हुए।
United Arab Emirates has launched a sweeping two-month visa amnesty program offering a crucial opportunity for individuals residing illegally in the country to regularize their status or depart without penalties. The program, which takes effect from today, was announced by the Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security and will run until October 30, 2024. Under this program, individuals with expired visas of all types, including tourist and residency visas, can either adjust their status to continue living and working legally in the UAE or leave the country without incurring fines or facing entry bans. This provision also extends to individuals born in the UAE without official documentation and those who have absconded from their sponsors. However, the amnesty does not apply to those who entered the country illegally.
इसराइल हमास गजा में अलग अलग इलाकों में तीन दिन तक कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए हैं। ये सहमति 6,40,000 बच्चों को पोलियो की खुराक देने के लिए बनी है। गजा में पोलियो से 10 महीने के एक बच्चे को लकवा मार देने की खबर आई थी। पिछले 25 वर्षों में गजा में पोलियो का यह पहला मामला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन पोलियो पर नियंत्रण के लिए गजा में 90% बच्चों को इसकी खुराक देने का लक्ष्य हासिल करना चाहता है। वहीं मौसम विभाग ने आज गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में तेज बारिश और बेहद खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती तूफान असना धीरे धीरे कमजोर होकर कल तक उत्तर पश्चिम अरब सागर पर कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाएगा। आज उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कई स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा से लगी बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव आज उत्तर पश्चिम पर केन्द्रित होगा।
At the Asian Cadet and Junior Judo Championships in Munghyeong, South Korea, India's Himanshi Tokas clinched silver medal in the women's 63 kg event yesterday. 19-year-old Himanshi is a Khelo Bharat athlete. This four-day judo championship will conclude today at the Munghyeong Gymnasium.
वहीं जर्मनी के नोवर में बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य सहित कुल चार पदक जीत लिए हैं। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुभव देशवाल, शुभम वशिष्ठ और चेतन सपकाल की तिकड़ी ने रजत पदक हासिल किया। शुभम वशिष्ठ ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य जीता। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के 69 एथलीट भाग ले रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर और जानते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद की खबरें अनीता से।
रिसर्चर्स एट दी ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्राकिश एक्वाकल्चर हैज डेवलप्ड अ वैक्सीन फॉर फिन फिश सच एज एशियन सी बेस एंड हैव ट्रांसफर्ड द टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। The institution signed a partnership agreement with Indian Immunologicals Limited, Hyderabad, to commercially produce Nordavac R, developed for viral nervous necrosis in finfish. The disease causes 100% mortality in larval and early juvenile stages, while infected adult fish will be asymptomatic but can transmit the virus to the offspring through eggs and gonadal fluids. The vaccine developed by SIBA can prevent vertical transmission of the disease to the offspring and prevent mortality in fingerlings. The vaccine can play a significant role in controlling the loss due to viral nervous necrosis in India and other Asian countries. Nokia announced the expansion of its fixed networks research and development facility in Chennai, making it one of the largest centers globally for Nokia and the largest for its fixed networks business. According to the company, the lab will further strengthen Nokia technology innovations in 10G, 25G, 50G and 100G PON, fixed wireless access, Wi-Fi and MDU solutions, as well as access network and home controllers. Karnataka Industries Minister M.B. Patil has said that the government is looking into the positive outcome of declaring hotel sector as an industry. He was speaking at a meeting called Karnataka State Hotel Owners Association in Bengaluru yesterday. The minister said that hotel owners' interest will be kept in mind while considering the possibility of bestowing industry status to the hotels. He noted that the hotel sector generates employment and enriching the tourism sector. He called upon hotels to provide healthy food at reasonable rates. M.B. Patil acknowledged the contribution of Udupi restaurants of coastal Karnataka region and Khanawalis of northern Karnataka region. The minister also felicitated a few well-known hoteliers on this occasion. Telangana Health Minister D. Rajanarasimha has monitored the state's readiness to deal with the increasing risk of seasonal diseases. In a meeting conducted with top health officials, he reviewed the situation of dengue, chikungunya and malaria with the monsoon season increasing vector-borne diseases. The official informed the minister that the state recorded over 6,000 dengue cases and nearly 3 lakh cases of viral fevers. The officials also informed that the top high-risk districts for the dengue remained Hyderabad, followed by Suryapet and the Medchal Malkajgiri. They further informed that the vector control efforts like anti-mosquito measures, including fogging, spraying activities and anti-larval operations, are being conducted regularly. In Telangana, extremely heavy rain lashed several parts of the state, leading to inundation of low-lying areas and disruption of road links between villages in several places. Suryapet, Mulugu, Warangal, Mehboobabad and Khammam districts witnessed extremely heavy rainfall over 29 centimetres at many places. Many districts witnessed swollen rivulets causing significant road disruptions. Control rooms have been opened at district collectorates and state secretariat in Hyderabad. State Chief Secretary Santhi Kumari directed district collectors to take measures to prevent any loss of life and property. Meanwhile, the Met Department has warned of continual rains for 2 days across the state. And now for Metro News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Farhat.
धन्यवाद अनीता. सबसे पहले शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर से. गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. श्री धर्मेंद्र वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं, जो दिल्ली सरकार में वर्तमान मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह लेंगे. वहीं राजधानी के त्रिवेणी सभागार में हिन्दी अकादमी द्वारा जाने माने गीतकार और कवि शैलेन्द्र की 100वीं जयंती के अवसर पर कल एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस संगोष्ठी की अध्यक्षता लीलाधर मंडलोई ने की. श्री मंडलोई ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि जो आदमी दिल में उतर जाए उससे बड़ा कोई रचनाकार नहीं होता. इस अवसर पर कवि शैलेन्द्र पर बने वित्र चित्रों को भी सभागार में दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया गया. हिन्दी अकादमी के सचिव संजय कुमार गर्ग ने सभी वक्ताओं और मुख्य अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित. और अब आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की ओर रुख कर लेते हैं. बृहन्मुंबई नगर निगम का केएएम अस्पताल बीएमसी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक स्वतंत्र ओपीडी शुरू करने वाला पहला अस्पताल बन जाएगा. यह क्लिनिक एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर शुरू किया जाएगा, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कार्य करेगा. ओपीडी का विवरण तैयार करने के लिए संगठन के प्रतिनिधियों ने पिछले कुछ महीनों में केएएम अस्पताल के अकादमिक डीन डॉ हरीश पाठक से मुलाकात की. पैनल ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली सर्जिकल और चिकित्सा समस्याओं को हल करने में मदद के लिए ओपीडी की आवश्यकता महसूस की. केएएम ओपीडी हर शनिवार को कार्य करेगी और यूरोलॉजी में आयोजित की जाएगी. इसकी देखरेख यूरोलॉजी प्रमुख डॉ सुजाता पटवर्धन करेंगी. वहीं बांद्रा पश्चिम में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए ई पुस्तकालय शुरू किया गया है. केंद्र का उद्घाटन भाजपा नेता एडवोकेट आशीष शैलार ने किया. एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इससे केंद्र के माध्यम से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगभग 5,000 डिजिटल किताबें, पत्रिकाएं और पठन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई गई हैं. तो ये तो थी दिल्ली और मुंबई की, और अब आगे बढ़ते हैं कोलकाता का रुख कर लेते हैं. केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दुष्कर्म और पॉक्सो मामले में से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से एक बार फिर त्वरित विशेष न्यायालय की स्थापना और उनके संचालन में तेजी लाने को कहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने एक पत्र में पश्चिम बंगाल में मौजूदा त्वरित न्यायालयों में लंबित मुकदमों पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने मुख्यमंत्री से जघन्य अपराधों से पीड़ित लोगों के लिए तेज और कुशल न्याय सुनिश्चित करने को कहा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 88 त्वरित न्यायालय स्थापित किए गए हैं, जो केंद्र सरकार की योजना की सिफारिश सिफारिश के अनुरूप नहीं है। वहीं कोलकाता में आर्यिकन मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए कल शहर और राज्य के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए और रैलियां निकाली गईं। इसमें लड़कियों के स्कूलों की पूर्व छात्राओं ने भी हिस्सा लिया। विभिन्न गैर राजनीतिक और नागरिक संगठनों ने भी विरोध करते हुए रैलियां निकाली। भारतीय जनता पार्टी का एस्प्लेनेड में धरना प्रदर्शन कल तीसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच आर्यिकन अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने टेली मेडिसिन सेवा की शुरुआत की है। तो अभी आप सुन रहे थे महानगरों की खबरें, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। और अब रुख कर लेते हैं महानगरों के मौसम का। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली के मौसम की, तो आज छुटपुट बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे, बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोलकाता की अगर बात करें तो वहां पर भी बारिश का दौर जारी रहेगा। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो अनीता, ये तो था हमारे शहर में मौसम का हाल। अब क्या रहेगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद में मौसम?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन और ड्रिजल। द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्री। Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be around 19 degrees and maximum will be around 26 degrees Celsius. And Hyderabad is expected to have a generally cloudy sky with a few spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 21 degrees and a maximum of 26 degrees Celsius. Time now to turn the pages of history and see what's important that happened on this day, that is the 1st of September. In 1668, Mumbai was handed over to the East India Company by the King of England. And in 1798, England signed a treaty with Nizam of Hyderabad, India. In the year 1916, Annie Besant founded India Home Rule League.
जी बिल्कुल अनीता, इतिहास के आईने में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। 1956 में जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जैसी असरदार टैगलाइन के साथ एलआईसी ने देश के लाखों लोगों को बीमा की सेवाएं देनी शुरू की थी।
इन द ईयर 1930 सुहास चिनी गांगुली फ्रीडम फाइटर वॉज अरेस्टेड एंड सेंट टू हिजाली जेल फॉर हर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। शी लेटर लिव्ड अ लो प्रोफाइल लाइफ आफ्टर द रिलीज फ्रॉम प्रिजन। In the year 1942, Rajbihari Bose established the Indian National Army. And in 1947, the Indian Standard Time was adopted for her.
जी हाँ, और बात की जाए अगर 1878 की तो एम्मा एम नट अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी। वहीं 1923 में ग्रेट कैंटो भूकंप ने जापान के टोक्यो और योकोहामा शहरों में भारी तबाही मचाई। 1956 की बात की जाए तो राज्यों के पुनर्गठन के बाद त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना।
In the year 1962, Shivaji University was established in Kolhapur, and in the year 1998, leaded petrol was banned in Delhi.
और 1962 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत आज ही के दिन 1 सितंबर 1939 में जानी जाती है, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोला। और उसके बाद जब फ्रांस ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की तथा इंग्लैंड और अन्य राष्ट्रमंडल देशों ने भी इसका अनुमोदन किया। तो ये तो थी इतिहास की बात, और अब याद कर लेते हैं कुछ जानी मानी हस्तियों को। तो अनीता, सबसे पहले हम किसे याद कर रहे हैं?
Today is the birth anniversary of Swami Prabhupada, a spiritual, philosophical and religious teacher from India who spread the Hare Krishna mantra and the teachings of Krishna consciousness to the world. Born as Abhay Charante and later legally named as Abhay Charanavarant Bhakti Vedanta Swami, he is often referred to as Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada or simply Prabhupada. To carry out an order received in his youth from a spiritual leader, teacher to spread Krishna consciousness in English. In his old age of 69, he journeyed in 1965 from Kolkata to New York City on a cargo ship, taking with him little more than a few trunks of books. He knew no one in America, but he chanted Hare Krishna in a park in New York City, gave classes, and in 1966, with the help of some early students, established the International Society for Krishna Consciousness, which we call ISKCON today, which now has centers throughout the world. He taught a path in which one aims at realizing oneself to be an eternal spiritual being, distinct from one's temporary material body, and seeks to revive one's dormant relationship with the supreme living being, known by the Sanskrit name of Krishna. One does this through various practices, especially through hearing about Krishna from standard texts, chanting mantras consisting of names of Krishna, and adopting a life devotional service to Krishna. And he also wrote and published translations and commentaries for texts, and he wrote and published translation and commentary called Bhagavad Gita. And he celebrated celebrated texts in India, but hardly known anywhere else, such as Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita, thereby making those texts accessible in English for the first time in the world. In all, he wrote more than 80 books.
और अब हम याद कर रहे हैं फादर बुल्के को. भारत में शब्दकोश का जिक्र आते ही फादर कामिल बुल्के का नाम जहन में अपने आप आ जाता है. प्रसिद्ध साहित्यकार फादर बुल्के का जन्म 1 सितंबर को हुआ. भारतीय संस्कृति और भाषाओं से लगाव न सिर्फ हमारे देश के लोगों में रहा, बल्कि विदेशों से आने वाले तमाम विद्वान भी भारतीय रहन सहन, भाषा, बौद्धिक संपन्नता आदि के कायल रहे. इन्हीं में से एक थे यूरोपीय देश बेल्जियम से भारत आए ईसाई मिशनरी फादर कामिल बुल्के. जी हाँ, कुछ समय दार्जिलिंग में बिताने के बाद वे झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने 5 साल तक गणित पढ़ाया. इसी दौरान फादर कामिल बुल्के ने हिंदी, अवधी और ब्रज भाषाएं लिखी. यहीं से उनका लगाव हिंदी साहित्य की तरफ बढ़ता रहा. फादर कामिल बुल्के ने हिंदी अंग्रेजी लघुकोश का 1955 में और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का 1968 में प्रकाशन कराया. इसके बाद वर्ष 1972 में उनका प्रकाशन मुक्तिदाता, जो हिंदी में प्रकाशित हुआ, काफी लोकप्रिय हुआ. फादर कामिल बुल्के के साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में योगदान के चलते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1974 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. आगे चलकर उनके कई और प्रकाशन भी लोकप्रिय हुए. साथ ही फादर कामिल बुल्के ने हिंदी में शोध पत्र लिखे जाने की शुरुआत की. हिंदी साहित्य शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले फादर कामिल बुल्के का निधन 17 अगस्त 1982 को दिल्ली में गैंगरीन नामक एक रोग के चलते हुआ.
Today is the birth anniversary of Rajinder Singh Bedi, born on this day in 1915, the Indian Urdu poet of progressive writers movement and a playwright who later worked in Hindi cinema also as a film director, screenwriter and dialogue writer. He is a grandfather to Rajat Bedi. As a screenwriter and dialogue writer, he is best known for Rishikesh Mukherjee's films Abhiman, Anupama and Satyakam, and what films they were, and Bimal Roy's Madhumati. As a director, he is known for Dastak, released in the year 1970, starring Sanjeev Kumar and Rehana Sultan, and Phagun, which was released in 1973, starring Dharmendra, Wahida Rehman, Jaya Bhadri and Vijay Arora in the lead roles. He wrote his scripts in Urdu, like a number of other prominent script writers at the time, and Bedi is considered one of the leading 20th century progressive writers of Urdu fiction and one of the most prominent Urdu fiction writers. He is most known for disturbing partition of Indian tales. And I am playing a snippet of a song from the film Dastak for all of you.
और अब आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं एक ऐसी हस्ती को जिनके बारे में अगर हम पहले बात करने से पहले उनका गीत सुना दें तो ज्यादा अच्छा होगा. मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ. एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ. तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ. आइए सुन लेते हैं मैं किसी रेल से गुजरती हूँ गाना. दुष्यंत कुमार की हम बात कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं दुष्यंत कुमार का ये खूबसूरत सा गीत.
जहां राह भूल जाता हूँ,
ये गाना था दुष्यंत कुमार का, जिसे गाया है मीनू पुरुषोत्तम ने। अत्यंत लोकप्रिय हिंदी गजलकार दुष्यंत कुमार रहे। उनका मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था और उन्होंने अपने काव्य लेखन का आरंभ दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से किया था। कविताएं 10वीं कक्षा से ही लिखने लगे, जिसे आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दिनों नया आयाम मिला। इन दिनों वे परिमल और नए पत्ते जैसी संस्थाओं के साथ सक्रिय रहे और उन्हें इलाहाबाद में सक्रिय साहित्यकारों का सानिध्य मिला। इन दिनों इलाहाबाद में कमलेश्वर, मार्कंडेय और दुष्यंत की मित्रता काफी लोकप्रिय भी रही। और उनकी एक और खूबसूरत सी गजल है, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी अलग आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
एंड टुडे इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द पॉपुलर इंडियन उर्दू हिंदी प्लेराइट और थिएटर डायरेक्टर पोएट एंड एक्टर। वी आर टॉकिंग अबाउट हबीब तनवीर, बोर्न ऑन दिस डे 1923। ही वाज द राइटर ऑफ प्लेस सच एज आगरा बाजार, रिटन इन 1954, चरणदास चोर 1975, a pioneer in Urdu and Hindi theatre. He was most known for his work with Chhattisgarhi tribals at the Naya Theatre, a theatre company founded in 1959 in Bhopal. He went on to include indigenous performance forms such as Naach to create not only a new theatrical language but also milestones such as Charandas Chur, Gaon Ka Naam Sasural, Mor Naam Damad and Kamdev Ka Apna Basant Ritu Ka Sapna. For him, true theatre of the people existed in the villages, which he strived to bring to the urban educated, employing both folk performers as actors alongside urban actors. He died in the year 2009 at Bhopal after a 3-week-long illness. Upon his death, he was the last of the pioneering actor managers in Indian theatre, which included Sisir Bhaduri, Utpal Dutt, Prithu Raj Kapoor, and often he managed to plays with mammoth cast such as in Charandas Chor, which included an orchestra of 72 people on stage, and Agra Bazaar with 52 huge cast and crew, no?
जी, और इसके अलावा 50 वर्षों की लंबी रंग यात्रा में हबीब ने 100 से अधिक नाटकों का मंचन और सर्जन किया। प्रसार भारती आर्काइव से उनकी आवाज में उन्हीं की एक गजल है, ये सुन लेते हैं।
तस्करा जफाओं का अश्क खून की सूरत में गम की तर्जुमानी है, तस्करा जफाओं का अश्क खून की सूरत में गम की तर्जुमानी है, मुझको गम से क्या लेना पर मेरी वफाओं की एक यही।
During his lifetime, he won several national and international awards, including the Sangeet Natak Academy Award in 1969, Jawaharlal Nehru Fellowship in 1979, Padma Shri in 1983, Kalidas Samman in 1990, Sangeet Natak Academy Fellowship in 1996, and Padma Bhushan in the year 2002. Apart from that, he had also been nominated to become a member of the Upper House of Indian Parliament, that is Rajya Sabha, between 1972 and 78. His play Charandas Chor, Charandas the Thief, translated, won him the Fringe First Award at Edinburgh International Drama Festival in 1982.
जी हाँ, और अब हम बात कर लेते हैं राही मासूम रजा की। उनका कहना था कि जीवन की ही तरह कहानी के आरंभ का भी कोई महत्व नहीं होता, महत्व केवल अंत का होता है। इसके अलावा मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। जी हां, ये लिखा था राही मासूम रजा ने और इसे आवाज दी थी हरीश भिमानी ने। आइए सुन लेते हैं।
मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है, इसकी हर घटना।
उर्दी शायरी से अपनी रचना यात्रा आरंभ करने वाले राही मासूम रजा ने पहली कृति छोटे आदमी की बड़ी कहानी लिखी, जो 1965 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर अब्दुल हमीद की जीवनी पर आधारित है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी उर्दू में नज़में भी लिखी, गजलें लिखी, कविताएं लिखी, और उनका एक और खूबसूरत सा गीत है जो गाया है चित्रा सिंह और जगजीत सिंह ने। आइए सुन लेते हैं।
खिल खिलाते हुए अपना दामन उठाते हुए बच्चों के पांव की धूल का कारवां, गांव की हर गली अपने पैरों की जंजीर है, गांव का हर मकान अपने रास्ते की दीवार है, नींद के गांव में आज यादों का बाजार है।
रंगों का दस्तान, चंदन का जंगल, मस्ती की बारिश।
इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का।
Stay tuned for Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, which is coming up next, followed by morning news at 8:15. Thanks for tuning in. Have a great day.
Namaskar.